अध्याय 35 कुटुंब में आत्मिक अभाव। हम अपने परिवार का उद्धार अनुभव कर सकते हैं। हमें उसके निमित्त प्रयत्नशील होकर निरंतर परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके व्यावहारिक रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। परमेश्वर के वचन द्वारा लगाया हुआ प्रतिबंध हमारे लिए हितकर होगा। इससे हमारे कुटुंब एवं आसपास आनंद का विस्तार होगा। इसके द्वारा हमारी रुचि शोधित होगी, हमारा न्याय पवित्र होगा, जिससे मन में शांति उत्पन्न सेवा करने हारे दूतों का वास होगा, जो हमारे एवं विकासमय जीवन का सुसंदेश आनंद के साथ स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। लिखने हारा दूत हमारे कार्यों का सुंदर रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। मसीह के आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहेगा। यदि पुरुष स्त्री स्वर्गीय प्रेम एवं सत्य से प्रभावित होने की अभिलाषा से अपने हृदय खोलें, तो ये धारणाएं उनके जीवन से ऐसे बह निकलेंगे जैसे मरुभूमि में एक झरना, जिसके द्वारा सूखी एवं ऊसर भूमि में संचार हो रहा हो। गृहधर्म, जीवन का अभाव, बच्चों की शिक्षा की अवहेलना से परमेश्वर अति अप्रसन्न होता है। यदि आपके बच्चों में से एक डूबने के भय से होकर नदी में लहरों से लड़ रहा हो, तो आपके मन में कैसी बेचैनी होगी। आप कितना प्रयत्न करेंगे, कितनी प्रार्थना करेंगे, कैसे जोश का प्रदर्शन करेंगे कि मनुष्य का जीवन बच जावे। यहां आपके बालक मसीह से बाहर रहकर अपने आत्मिक विनाश को प्राप्त कर रहे हैं। शायद वे कठोर और अशिष्ट होकर एडवेंटिस्ट नाम पर कलंक लगा रहे हैं। वे संसार में ईश्वर रहित और आशाहीन होकर नाश हो रहे हैं और आप निश्चित बैठे हैं। शैतान लोगों को परमेश्वर से भटकाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहता है। जब धार्मिक जीवन सांसारिक व्यापार की चिंताओं में डूब जाता है और लोगों के मन काम धंधे में ऐसे फंस जाते हैं कि वे बाइबल पढ़ना, एकांत में प्रार्थना करना, भोर और संध्या को परमेश्वर की वेदी के समक्ष प्रार्थना रूपी बलिदान चढ़ाने में लापरवाह रहते हैं, तो शैतान अपने उद्देश्यों की सफलता का अनुभव करता है। कितने हैं जो इस भरमानेहारों के सरदार की दुष्टता और युक्तियों से अनजान हैं। भोर और संध्या की आराधना, माता पिताओं के प्रति काल और संध्या काल अपने बालकों को एकत्र करके नम्र निवेदन सहित अपने हृदयों को परमेश्वर की सहायता के लिए उठाइए। आपके प्रियजनों के सन्मुख परीक्षाएं हैं। दिन प्रतिदिन बालक और वृद्ध दोनों के पथ में परेशान करने वाली बातें उपस्थित हैं। शांतमय प्रेमी व आनंदमय जीवन व्यतीत करने वालों के लिए प्रार्थना अत्यावश्यक है। परमेश्वर से निरंतर सहायता प्राप्त करने द्वारा हम स्वयं ऊपर विनयी हो सकती हैं। यदि किसी समय प्रत्येक घर को प्रार्थना का घर बनाना है, तो वह समय अब है। अभक्ति और नास्तिकता का राज्य है, अधर्म का बाहुल्य है, आत्मा के मुख्य प्रवाहों में भ्रष्टाचार का संचार है, जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, पाप के वशीभूत होकर मानसिक शक्तियों पर शैतान का साम्राज्य है, आत्मा को परीक्षाओं का क्रीड़ा स्थल बनाया गया है, और जब तक सर्वसामर्थी भुजा द्वारा मनुष्य का उद्धार न हो, तब तक विद्रोहियों का सरदार नेतृत्व करता है। तो भी इस भय और संदेह के भयानक काल में अपने आप को मसीही कहने वाले कुछ घरानों में कौटुंबिक आराधना नहीं होती। वे घर में परमेश्वर का सम्मान नहीं चाहते हैं। वहां बच्चों को परमेश्वर के प्रेम एवं भय की शिक्षा नहीं दी जाती। अनेकों ने अपने आप को परमेश्वर से पृथक कर लिया है, जो उसके निकट आने के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं। वे बिना क्रोध और विवाद के अपने पवित्र हाथ को उठाकर हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं आ सकते। इब्रानियों 4:16, 1 तिमुथियुस 2:8। वे भक्ति का भेष तो रखते हैं, पर उसकी शक्ति से अनजान हैं। प्रार्थना की अनावश्यकता का विचार मनुष्यों की आत्माओं के विनाश के लिए शैतान की एक सफल युक्ति है। प्रार्थना उस परमेश्वर के साथ संलाप है, जो बुद्धि का मूल तथा सामर्थ, शांति और आनंद का सोता है। यीशु ने पिता से ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पौलुस ने विश्वासियों को हर बातों में प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनती करने और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का उपदेश दिया। याकूब कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इब्रानियों 5:7, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, याकूब 5:16। विश्वास योग्य प्रार्थना के साथ माता पिता अपने बच्चों के चारों तरफ बाड़ा बांध लें। उन्हें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ रहे और उसके पवित्र दूत शैतान की दुष्ट युक्तियों से बचाने में उनकी रक्षा करें। प्रत्येक कुटुंब में भोर और संध्या को भजन करने का निश्चित समय होना चाहिए। ये कैसा उचित है कि नाश्ता करने के पहले माता पिता अपने बच्चों को अपने आसपास बुलाकर रात्रि की रक्षा के लिए स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें और दिन भर के लिए उसकी रक्षा, सहायता एवं अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। जब संध्या आवे तब कितना सुहावन है कि माता पिता और बालक एकत्रित होकर एक बार पुनः दिन भर की आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रत्येक भोर को अपने आप तथा अपने बच्चों को परमेश्वर के पास समर्पित कीजिए। वर्षा और माहों का हिसाब ना लगाएं, ना वे आपके वश में नहीं हैं। आपको तो एक छोटा दिन दिया गया है। ये समझते हुए कि आपके लिए ये अंतिम दिवस है, इसकी प्रत्येक घड़ी में परमेश्वर की सेवा कीजिए। अपनी समस्त योजनाओं को परमेश्वर के समक्ष रख दीजिए कि अमुक काम का किया जाना या त्यागा जाना परमेश्वर की सुइच्छा के अनुसार हो। चाहे आपको रुचिकर वस्तुओं का परित्याग भी करना हो तो भी अपनी इच्छा की अपेक्षा उसी की इच्छा ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आपका जीवन अधिकाधिक ईश्वरीय सांचे में ढाला जावेगा और परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। फिलिप्पियों 4:7। पिता अथवा उसकी अनुपस्थिति में माता दिलचस्पी एवं समझ में आ जाने योग्य सरल शास्त्र पाठों को चुनकर आराधना संक्षिप्त हो। लंबे पाठ पढ़ने व लंबी प्रार्थना करने से आराधना थकाने वाली प्रकट होती है, जिसकी समाप्ति में मानो चैन मिल जाता है। आराधना रुखी सुखी, मनोरंजन रहित थकाने वाली होने से परमेश्वर का अनादर होता है। इससे बालक भी घबराते हैं। माता पिताओं, आराधना को अति दिलचस्पी बनाइए। कोई कारण नहीं है कि आराधना का समय समस्त दैनिक कार्यकार्य में सुहावन व मनभावन ना हो। थोड़ा ही विचार करके इसे अति रुचिकर और लाभदायक बनाया जा सकता है। समय समय पर आराधना की विधि में बदलाव होता रहे। शास्त्र पाठ पर प्रश्न पूछे जावे कि कभी कभी उन पर सरल टीका भी की जावे। स्तुति भजन गाए जावे। प्रार्थना संक्षिप्त एवं अभिप्रायपूर्ण हो। आराधना संचालक सरल एवं गंभीर शब्दों में परमेश्वर की भलाइयों के लिए उसकी स्तुति करे और सहायता पाने के लिए याचना करे। जब अवसर हो बालकों को भी आराधना में प्रार्थना करने और शास्त्र पाठ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जावे। ऐसी आराधनाओं के महत्व और आशीष का पूरा प्रकटीकरण अनंत काल ही में प्रकट होगा।